शांति ओम शांति। आज रविवार है, हम सब आव्यक्त बाप तारा के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली 18 जनवरी की मुरली है। बाबा ने कहा कि आज का दिन केवल स्मृति दिवस नहीं है, समर्थि दिवस है। और बाबा ने कहा कि आज के दिन ही बाप ने बच्चों को सर्वशक्तियां वरदान के रूप में दी हैं, और बच्चे उन शक्तियों को कैसे यूज करते हैं जिसके कारण से नंबर वार बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे ऑल माइटी हैं, अथॉरिटी हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों को अपने सीट पर स्थित होकर के कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करना है। भविष्य में जो राजा बनने वाले हैं तो उससे पहले ही वो राजे के जो संस्कार हैं वो क्या करना है, अभी संगम युग पर ही भरने हैं। बाबा ने कहा जैसे बच्चों का इतना प्यार है, बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप हमेशा जी हजूर करके हाजिर हो जाते हैं। तो ये शक्तियां क्यों नहीं हाजिर होती हैं, उसका एक कारण बताया कि कोई न कोई प्रकार का लीकेज है जिसके कारण ये सर्व शक्तियां समय पर हाजिर नहीं होती हैं। और वो कौन सा लीकेज है वो भी बाबा ने बताया। बाबा ने कहा कि सब बच्चे बहुत प्यार से बाप को याद करते हैं, बाप के स्नेह में तो सब बच्चे पास है। बच्चे बाबा को कहते हैं मीठे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, तो बाबा भी उनके रिटर्न में क्या कहते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे। तो बाप भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अभी हम सुनते हैं आज की आव्यक्त मुरली। आज है, आज की डेट है 9 फरवरी 2025 और रिवाइज्ड मुरली की तारीख है 18 जनवरी 2004। आज की डेट है 9 फरवरी 2025 और रिवाइज्ड मुरली की तारीख है 18 जनवरी 2004, 18 जनवरी 2004। मुरली का मुख्य हेडिंग वर्ल्ड ऑलमाइटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। वर्ल्ड ऑलमाइटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए, क्योंकि जब 18 जनवरी का दिन आता है सुबह से लेकर के बच्चे बाप के स्नेह में और बहुत प्यार में रहते हैं और बाबा को बहुत प्यार से याद भी करते हैं, कोई उलहने भी देता है, कोई स्नेह से अनुभव भी करते हैं। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले रतन, क्योंकि जिन्होंने साकार पालना ली है और जिन्होंने अविक पालना ली है, अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले बच्चे और साथ में अलौकिक पालना वाले बच्चे रतन दोनों के दिल की यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। सभी के दिल में बाप दादा की स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप दादा के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई। बच्चों के दिल में बाप दादा के स्नेह के प्रति जो तस्वीर है, जो सारा उनका याद प्यार वो बाबा देख रहे हैं, तो बाबा कहते हैं सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, कौन सा गीत? मेरा बाबा। और बाप के दिल में से ये गीत बज रहा, सभी बच्चों के दिल में ये गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और बाप के दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। ये ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। कोई गीत होता है ना, अंदर ही अंदर गाते ही रहते ऑटोमेटिकली निकलता रहता है, तो बाबा कहते हैं ये ऑटोमेटिक गीत और अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल से स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं, क्योंकि बाबा की जब मुरली चलती है पूरे विश्व के अंदर ट्रांसमिशन होता है, तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। ये स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। ये स्मृति दिवस क्या है? सब बच्चों को समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। आज के दिन बाबा अव्यक्त हुए तो ताजपोशी दिया, दादी दीदी को दिया, तो बाबा कहते आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व की सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। स्वयं अननोन बने, खुद तो ऐसे गुप्त हो गए पता भी नहीं पड़ा, स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं कर्ण करावन हार बन करण हार बच्चों को बनाया। कराने वाला खुद, लेकिन करण कारण हार किसको बना दिया? कराने वाला बाबा है लेकिन बच्चों को आगे रखा। स्वयं करण करावन हार बन करण हार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस सो स्मृति दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व स्मृतियां बच्चों को वरदान में प्राप्त हैं। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे। पहले बाबा बच्चों को कैसे देख रहे हैं कि बच्चे बाबा की अनेक प्रकार की यादों में खोए हुए, तो स्मृति स्वरूप भी देख रहे हैं और उसके रिटर्न में बाबा क्या दे रहे हैं? उनको शक्तियां दे रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्व शक्तिवान स्वरूप में भी देख रहे, दो बातों में, सर्व स्मृति स्वरूप, मास्टर सर्व शक्तिमान स्वरूप में भी देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्व शक्तिवान। ये सर्व शक्तियां बाप द्वारा एक एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। अब बाबा कहते हर बच्चे को ये सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई हैं। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने कौन सा वरदान दिया? दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया सर्व शक्तिवान भव। ये हर जन्म दिवस का वरदान है। बाबा कितना अच्छा बता रहे, ये वरदान ऐसा है पूरी कल्प के लिए। ये हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप में कार्य में लगाओ, तो हर एक बच्चे को जो शक्तियां तो हर एक बच्चे को मिली हैं, लेकिन कार्य में लगाने में नंबर वार हो जाते। बाबा कहते बाबा ने वरदान तो दे दिए हर एक बच्चे को, लेकिन लगा कार्य में लगाने में नंबर वार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी है। अब बाबा ने कौन सा राज बताया कि शक्तियों को इनवाइट करने के लिए और हाजिर करने के लिए क्या करना है? अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप शक्तियां ऑर्डर में रहें, वरदाता के वरदान की स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। ये नहीं कहेंगे शक्ति तो मिली नहीं, क्या करें, ये शक्ति होती नहीं, आई नहीं, बहुत ऑर्डर किया। बाबा कहते उसको आना ही है, हाजिर होनी ही है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन की समृद्धि स्वरूप में आप ऑर्डर करो। किस स्वरूप में रहना है? कि बाबा ने इतने वरदान दिए हैं, हमको वरदानों से भरपूर हैं, और मालिकपन की समृद्धि से ऑर्डर करेंगे तो हाजिर हो जाएगी। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन की समृद्धि स्वरूप में हो आप ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, ये हो नहीं सकता। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट हो। शक्तियों को बुलाने का क्या करना है? मास्टर को मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होना है। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट हो। बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर माना नहीं जाता। देश में भी देखते हैं जो जिस सीट पर है तो ऑर्डर करता है, उसको माना जाता है। सीट पर नहीं है, जब उसका सीट का टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद वो कितना भी ऑर्डर करे कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए बाबा भी क्या बता रहे हैं, बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर माना नहीं जाता है। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको तो याद करते हैं तो आप तो हाजिर हो जाते हो, हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता है तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर हो सकती? हजूर हाजिर हो सकता है तो बाबा कहते शक्ति क्यों नहीं हाजिर हो सकती? सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। ये सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बाबा पूछते हैं प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों की होती है ना। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो उसको बुलाने के लिए? आओ आओ, कभी ऐसा भी होता है मालिक कमजोर होता है ना, काम करने वाले जो होते हैं ना वो इतने होशियार हो जाते, मालिक बुलाता रहता है, आ रहा हूँ अभी आता हूँ। मालिक कमजोर होता है तो बुलाने वाले को बुलाते रहते, आ रहा हूँ अभी आऊंगा, वो करते करते काम भी पूरा हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि समृद्धि स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो? ऑर्डर करो। वर्ल्ड ऑलमाइटी के डायरेक्ट बच्चे हो, ये समृद्धि का नशा सदा इमर्ज करो। अपने आप को चेक करो कि वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ, ये स्मृति स्वतः रहती है। ये चेकिंग करना है, रहती है या कभी कभी रहती है? आजकल के समय में तो अधिकार लेने के लिए झगड़ते, दुनिया में भी क्या होता है, लौकिक में कितने झगड़े हैं। लौकिक में बच्चे चाहते बाप की प्रॉपर्टी मेरे को मिले, कई बच्चे चालाक होते हैं प्रॉपर्टी को हब कर लेते हैं, दूसरा फिर बच्चा लड़ता है तो बाबा कहते हैं प्रॉपर्टी को लेने के लिए लड़ते हैं और यहाँ प्रॉपर्टी मिलती है उसको यूज नहीं करते। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के लिए ही झगड़े हैं। और आप सबको परमात्म अधिकार, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है, तो अपने अधिकार की समर्थि में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थि दिलाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थि अर्थात कमजोर हो चुकी है ना, तो क्या चाहती है, इस समय सर्व आत्माएं समर्थि अर्थात शक्तियों की भिखारी है। वो चाहते हमको शक्ति मिले, हमको ये मिले, तो बाबा कहते इस समय सर्व आत्माएं समर्थि अर्थात शक्तियों की भिखारी हैं। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते हैं, क्या मांगेंगे, वरदान मांगेंगे, शक्ति मांगेंगे। जड़ चित्रों के पास जाते ना, क्या क्या मनोकामना पूर्ण करने के लिए जाते हैं, आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं ये समर्थ आत्माएं सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थि दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना है। तो बाप दादा ने इशारा भी दिया है, बाप दादा ने रिजल्ट भी देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता। क्यों नहीं सर्वशक्तिवान बन सकते, क्यों नहीं क्या शक्तियां दे सकते हैं, उसका कारण है समय और संकल्प व्यर्थ जाता है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। क्या करेगी लाइट, टिम टिम करेगी, कभी जोर जोर से टिम टिम करेगी, कभी ऊपर नीचे होती रहेगी, कभी अंधेरा होगा थोड़ा रोशनी हो जाएगी, क्योंकि कनेक्शन ठीक नहीं है, लूज है। तो बाबा कहते हैं जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक आ नहीं सकती है। तो ये व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदाकाल की स्मृति बनाने नहीं देती, इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ और बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। आजकल तो क्या है, जो वेस्टेज है उसको कितना यूज करते, वेस्टेज से बिजली बनाते, वेस्टेज से बहुत कुछ बनाते, एनर्जी बनाते हैं। तो बाबा कहते जो भी वेस्टेज है उसको बचाओ, उससे एनर्जी बनाओ। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा तो वेस्ट हो जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है, लेकिन ये वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, नंबर वार बना देगी। अब नंबर वार क्यों बनते हैं, ये वेस्ट की आदत है, नंबर वार बना देगी, नंबर वन बनने नहीं देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई, ज्ञान से पहले भी बाबा क्या करते थे, सारी कहानी तो सुनी हुई है, बाबा दरबार लगाते थे, मन को पूछते थे तुम क्या करता है, तुम इधर उधर क्यों घूमता है, सर्व कर्म इंद्रियों से बात करते थे, उनको डायरेक्शन देते थे। तो बाबा बता रहे हैं, तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई, किसके दरबार लगाई, बच्चों की नहीं अपनी ही कर्म इंद्रियों की दरबार लगाई, ऑर्डर चलाया हे मन मुख्यमंत्री तुम्हारी चलन आज ये अच्छी नहीं रही, ऑर्डर में चलो हे संस्कार ऑर्डर में चलो। देखो बाबा कितना ध्यान रखा, मुख्य मन को भी बोला तुमने आज क्यों ऐसा किया, संस्कार को भी बोला ऑर्डर में चलो, हे संस्कार ऑर्डर में चलो, क्यों नीचे ऊपर हुआ है मंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कारण बताओ निवारण करो। अब बताओ इतना सूक्ष्म पुरुषार्थ मन से संस्कार से स्वभाव से भी बाबा बात करते थे, क्यों ऐसा किया है, क्यों चलन ठीक नहीं रही, कारण ढूंढो फिर उसका निवारण करो, कारण बताओ निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाए, ऐसी रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे अब बाबा बच्चों को काम दिया है, हर एक बच्चे को अपनी स्वराज्य की दरबार लगानी, फिर बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूहान करते हैं, पर्सनल रूहान भी करते हैं, बताएं क्या करते हैं, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ हम क्या बनेंगे। बच्चे पूछते हैं ना, बाबा को पूछते थे बाबा हमें बताओ हम क्या बनेंगे भविष्य में, और वो अपना चित्र क्या होगा क्या बनेंगे, वो भी बाबा ने अभी बताया है। पर्सनल रूहान करते हैं, बताएं, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा जगदम्बा माँ से भी सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे, मम्मा आप हमको चित्र दो हम कैसे हैं। यज्ञ की स्थापना मम्मा बच्चों को बहुत प्यार से संभालती थी, तो बच्चे भी मम्मा को कहते थे बताओ हम क्या बनेंगे, तो मम्मा तो उनको बताती थी ऐसा करोगे तो ऐसा बनोगे, तो मम्मा से चित्र मांगते थे मम्मा आप हमको चित्र दो हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रू रिहान करते समय अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है ना, दिल हम क्या बनेंगे बाबा बता दें अच्छा है। अब बाबा बता रहे हैं कौन सा चित्र कैसे मिल सकता है। आप सबकी भी दिल होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन बाप दादा कहते हैं बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। अब दर्पण भी ऐसा नहीं है कॉमन नहीं है, बाबा कहते हैं विचित्र दर्पण दिया है, वह दर्पण कौन सा है। लेकिन बाप दादा कहते हैं बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है, वह दर्पण कौन सा है। वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना, दर्पण से पहले बाबा पूछ रहे वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। बाबा ने सबसे हाथ उठवाया, उठा सकते बाबा को दिखा सकते हैं तो हाथ उठाओ, स्वराज्य अधिकारी हो। अच्छा कोई कोई नहीं उठा रहे, अब बाबा ने देख लिया यहाँ भी कई ऐसे नहीं उठाया, तो बाबा पूछ रहे अच्छा कोई कोई नहीं उठा रहे, थोड़ा थोड़ा है क्या, बाबा पूछ रहे कोई ऐसा है जो नहीं समझता है, कई फिर धीरे से हाथ उठाते हैं, थोड़ा थोड़ा है क्या। अच्छा सभी स्वराज्य अधिकारी हो, फिर बाबा ने जैसे पूछा ना सब ने हाथ उठा दिया, तो फिर बाबा ने कहा मुबारक हो, तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। अब कौन सा दर्पण मिला, स्वराज्य अधिकार का चार्ट भविष्य स्टेटस का दर्पण है। ये दर्पण तो सबको मिला है ना, क्लियर है ना, कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए। अब कांच के ऊपर दाग लगा होगा तो क्लियर दिखाई नहीं देगा, कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे है ना। अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है। बाबा ने उदाहरण भी दिया, बाथरूम में जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, गर्म पानी का नल खोलते, उसकी जो भाप होती है वो कांच के ऊपर आ जाती है, कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं काले दाग तो नहीं लगे हुए हैं। अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, तो वो आईना तो वह कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है, जैसे फागी होती है ना, पूरा ऐसे फागी की तरह वो आईना भर जाता है। तो आईने पर भी ऐसा होता है, जो आईना क्लियर नहीं दिखाता है। नहाने के समय तो आप सबको अनुभव होगा, बाबा के इसको क्या बताना है, लेकिन बच्चों को तो अनुभव है कि जब नहाने जाते हैं, गर्म पानी खोला तो पहला काम होता है पूरा आईना जो है वो ऐसे फागी से भर जाता है। तो बाबा कहते हैं नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा, तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्म इंद्री, तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्म इंद्री अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं लेकिन कभी कभी भी नहीं है, एक है पूरा कंट्रोल, दूसरा है कभी कभी भी नहीं है। अगर मानो कोई भी कर्म इंद्री आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, है कंट्रोल में लेकिन कभी कभी नहीं भी हुई है, तो बाबा कहते हैं तो फिर क्या होता है, कोई भी कर्म इंद्रियां, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पांव हो, पांव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता है। तो पांव भी कंट्रोल भी नहीं हुआ ना, जाना एक तरफ और जाकर के फिर देखते ना बुरा संग है, उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर पांव भी कंट्रोल तो नहीं हुआ, संगठन में बैठ जाएंगे। आप देखते जा रहे कहीं और, देखते ग्रुप बैठा है, बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, वहां पर बैठ जाते हैं और वहां पर बैठ करके क्या करते हैं, संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुने। कई बार देखते हैं जा रहे हैं जल्दी में, देखा बीच में संगठन है, वो कोई एक बात सुना रहे हैं तो खड़े हो जाएंगे, सुनते सुनते वहां पर घंटों बीत जाते हैं। तो वो क्या सुनाते हैं, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनाते हैं, सुनती नहीं उल्टी सुनेंगे। तो कोई भी कर्म इंद्रियां संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे भी चेक करो, जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य को कंट्रोल क्या कर सकेंगे, तो राजा कैसे बनेंगे। स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में भी नहीं कर सकते ना। तो बाबा कहते हैं तो इसको ही चेक करो कि जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में क्या कंट्रोल करेंगे, तो राजा कैसे बनेंगे। वहां तो सब कुछ एक्यूरेट है, सत्यों के अंदर राजा बनना है, ऊंच पद पाना है, वहां तो हर चीज एक्यूरेट है, कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम तो प्रारब्ध क्या होगे। पुरुषार्थ को तेज करने के लिए क्या चाहिए, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, अगर ये दोनों कम है तो पुरुषार्थ भी कम होगा और पद भी कम होगा। हिसाब करने में तो होशियार हो ना, तो इस आईने में अपना फेस देखो। कौन सा आईना दिया बाबा ने, कौन सा आईना दिया है, स्वराज्य अधिकार का। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो, राजा की आती है या रॉयल फैमिली की आती है या रॉयल प्रजा की आती है। अब बाबा ये नहीं कहा कि साधारण प्रजा, राजा की, रॉयल फैमिली या रॉयल प्रजा की, राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है या रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है, कौन सी शक्ल आती है। तो मिला चित्र, बाबा पूछ रहे चित्र मिला, इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से, बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय में बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ। अब बहुत काल का अभ्यास तो लंबे टाइम से चाहिए, अंत के समय तो बाबा कहते आ जाएगा, लेकिन वो तो थोड़ा काल हो गया ना। तो बाबा कहते हैं बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल का हुआ या थोड़ा काल का हुआ, बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तखत पर भल नहीं बैठे, तखत पर तो एक ही बैठेगा ना, लेकिन रॉयल फैमिली में आना ये भी तो जैसे कि तखत पर बैठा है। तो बाबा कहते तखत पर भल नहीं बैठे, लेकिन राज्य अधिकारी हो, ये बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है, बहुत काल के पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। इसलिए अलबेले नहीं बनना, अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता नहीं 8 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं। हालांकि साइंस सब देख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, और पूरा कब होगा ये थोड़ी पता है। धीरे धीरे क्यों चल रहा है, क्योंकि बच्चों का पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ है, पता तो है ही नहीं। तो आने वाले समय में हो जाएंगे नहीं, कहीं ना लास्ट में तो हो ही जाएंगे, बाबा कहते फिर नहीं हो पाएंगे। विश्व के अंतकाल सोचने की बजाय अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है कौन कब जाएगा, पता थोड़ी रहता है, कभी अचानक हो जाता है, कभी किसका होता है, जाने वाला वो जाता ही नहीं है, जिन्ना हो जाता है, कोई लंबा टाइम निकाल लेता है। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा पूछे आपके पास डेट फिक्स है, किसके पास पता है, किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरी मृत्यु होना है। बाबा पूछ रहे अंतकाल की डेट फिक्स है, आपके पास डेट फिक्स है, किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरी मृत्यु होना है, है किसके पास, नहीं है ना। सबने कहा बाबा नहीं, नहीं है ना, विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपने अंतकाल सोचो। होना है अंत, लेकिन बाबा कहते पहले अपना भविष्य सोचो, अपना अंतकाल सोचो, लेकिन पहले अपना अंतकाल सोचो और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। मम्मा का कौन सा स्लोगन था कि याद है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो बाबा कहते हैं जगदम्बा का स्लोगन याद करो, क्या स्लोगन था, हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की ना आपकी अंतिम घड़ी की। बाबा ने बता दिया कि ना विश्व की ना आपकी अंतिम घड़ी की, सब अचानक का खेल है, इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपने दरबार लगाओ। बाबा क्या कह रहे, हे राजे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अपने दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है, लॉ एंड ऑर्डर होगा। सतयुग के अंदर प्रकृति भी लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, हर चीज लॉ एंड ऑर्डर में है। तो बाबा कहते हैं ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है लॉ एंड ऑर्डर में होगा, स्वतः ही होगा। लव और ला दोनों का बैलेंस रहेगा, वहां पर ला कोई चलाएगा नहीं, लेकिन हर चीज ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली होगी, कोई इसमें कोई भी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं लव एंड ला दोनों का और बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई ला पास नहीं करेगा, सतयुग में बैठ करके राजा कोई लॉ बनाए या पास करे, वो ऑटोमेटिकली मर्यादाएं बनी हुई हैं। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि ये लॉ है। जैसे आजकल लॉ बनाते हैं ना, आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता, पुलिस वाले की ड्यूटी है सेफ्टी, जब देखता कोई ऊपर नीचे कर रहा है तो अपने हाथ में लॉ भी ले लेता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वहां तो नेचुरल लव और ला का बैलेंस होगा। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो। कौन सी सीट? ऑलमाइटी अथॉरिटी की। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो। तो ये कर्म इंद्रियां, शक्तियां, सब गुण आपके आगे जी हजूर करें। क्या करेंगे? तो ये कर्म इंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे। तो जी हाजिर, कर्म इंद्रियां भी धोखा नहीं देंगे, वो सीधा ही जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? ये हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना। अब उस समय ऐसे था, हर जोन में जो जो पुराने हो गए थे, कई प्रकार के सेलिब्रेशन चल रहे थे। तो बाबा ने कहा हर एक जोन में तो समारोह मनाए हैं, तो हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना। सम्मान समारोह भी मना लिया। अभी कई बार कई, जैसे 25 साल हुए ज्ञान में, किसको 50 साल हुए या बहुत पुराने, उनके प्रोग्राम रखे गए, सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए, सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। अब सदा हर संकल्प और समय के, अब सदा हर संकल्प और समय की सफलता की सेरेमनी बनाओ। हर समय और समय की और संकल्प की सफलता की सेरेमनी बनाओ। अब सदा हर संकल्प और समय की सफलता की सेरेमनी मनाओ, ये समारोह मनाओ। वेस्ट खत्म, क्योंकि आपकी सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराश से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। चारों तरफ निराशा है तो कौन से जगाने हैं? शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होती है तो दीपक जलाते हैं ना, कोई सफलता को प्राप्त करता है दीप जलाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। कोई भी सफलता होती है तो दीपक जगाते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई न कोई निराशा है ही, निराशा के कारण परेशान है, टेंशन में है। तो हे अविनाशी दीप को, आज पहले बाबा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी, अपना स्वराज्य लगाओ, अपनी दरबार लगाओ। अभी बाबा कहते हैं हे अविनाशी दीप को, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। कौन सी दिवाली? आशाओं के दीपकों की। तो हे अविनाशी दीप को, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्व फिर सर्व। सुना? बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश है। स्नेह की सब्जेक्ट में तो परसेंटेज अच्छी है। कभी कभी बाबा कहते हैं स्नेह की सब्जेक्ट में सब बच्चे पास हैं, आज बाबा कह रहे परसेंटेज अच्छी है, स्नेह के सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है, आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुंचे हो? आपको कौन लाया है? ट्रेन लाई या प्लेन लाया या स्नेह लाया? आएंगे ट्रेन या प्लेन या कार में आएंगे तो बाबा पूछते ट्रेन लाई प्लेन लाया या स्नेह? स्नेह के कारण ही तो ट्रेन या प्लेन से आए। आपको कौन लाया? ट्रेन लाई प्लेन लाया या स्नेह लाया? स्नेह के प्लेन से तो पहुंच गए हो, तो स्नेह में तो पास हो। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर हैं, इसमें पास होना है। स्नेह में पास है लेकिन किसमें पास होना है? ऑलमाइटी अथॉरिटी मास्टर है। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर है, इसमें पास होना है। तो ये प्रकृति, ये माया, ये संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे कि मालिक का क्या आर्डर है। बाबा कहते जब मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज में रहेंगे तो प्रकृति माया सब आपका इंतजार करेंगे, हर घड़ी इंतजार करेंगे कि मालिक का क्या आर्डर है। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा कि संपन्न कैसे हो बन गया? पता ही नहीं पड़ा संपन्न बन गया, उड़ने का टाइम भी आ गया, पंछी बन उड़ गया, पिंजरा खुल गया, साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजरा खुल गया और पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सीख व प्रेम से बच्चों को जल्दी अभी आओ ये आह्वान करे। बाबा भी कहते कब तक बच्चों का इंतजार करूंगा, तो बाबा को भी कहना पड़ता है जल्दी आओ तो आह्वान कर रहे हैं। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सीख व प्रेम से बच्चों को जल्दी आओ अभी आओ ये आह्वान कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए है ना, बस सभी एक सेकंड में अपने दिल में ये ड्रिल करो, अभी करो, सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ तो बाबा ने आज काम भी दे दिया, तो बाबा कहते ड्रिल भी करो काम भी करो और सब संकल्पों को खत्म करना है। तो बाबा से क्या बात करनी है? ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने के बने। क्या बाबा से बात करनी है? बाबा बच्चों को बुला रहे हैं और बच्चों को क्या करना है? ओ बाबा वायदा करना, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त स्वरूपधारी बने कि बने। बाप दादा ने फिर ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सुसमर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुण को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाबा ने बताया कि बाबा को किसकी याद आ रही है, अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है, कौन याद है, जनक बच्चे। दादी जानकी का ये था, जब वो विदेश में है, कभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वहां पर है, तो बाबा को पहले मैसेज दे रहे थे, बाबा आप आ रहे हैं लेकिन पहला नंबर हॉल में मैं होंगे, मैं वहां पहुंच ही जाऊंगे, मैं आपके सामने होंगे। तो बाबा को भी क्या है, दादी जानकी ने मैसेज दिया होगा, तो इसलिए तो बाबा कह रहे हैं अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है, जनक बच्ची खास संदेश भेजा था कि मैं सभा में हाजिर अवश्य रहूंगे। कभी वो शरीर ठीक नहीं होता था ना, तो क्या होता था, बहने कहती थी दादी आप अंदर बैठ के सुनना, कहती क्यों, मैं बाबा के सामने बैठूंगे, ट्रांसमिशन के सामने बैठ जाते थे, उतना ही इतना खुशी में बैठ करके सुनती थी। तो अभी खास संदेश भेजा था कि मैं सभा में अवश्य हाजिर रहूंगी, चाहे मैं लंदन में हूँ, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार, आपको तो सम्मुख याद प्यार मिल रहा है ना, उनको तो बाहर बैठे जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ट्रांसमिशन देख रहे हैं, उनको बाबा ने ये याद दिया, लेकिन जो बाबा के सामने बैठे हैं तो बाबा कहते आपको तो सम्मुख याद प्यार मिल रहा है ना, आज मधुबन वालों को भी याद किया, हाथ खड़ा करो, आगे आगे बैठे हैं, यहाँ सब बैठे हैं, कुछ नीचे भी सुन रहे हैं, आज मधुबन वालों को भी याद किया। ये आगे आगे बैठते हैं ना, बाबा के टाइम पर क्या होता था, मधुबन वाले आते थे एकदम एक कोने में, इतनी सी जगह हो इसमें छिपके बैठ जाते थे, कॉर्नर में, नीचे पट में, इधर उधर, कोई भी कॉर्नर खाली नहीं रखते थे, सब में बैठ जाते थे। ये आगे आगे बैठे है ना, हाथ उठाओ मधुबन वाले, हाथ उठाओ फिर से, मधुबन की सभी भुजाएं, सभी भुजाओं में कौन है, मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है। सभी भुजाएं कौन सी है, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, संगम भवन, ग्लोबल हॉस्पिटल, म्यूजियम, ये सब की सब मधुबन की भुजाएं हैं। तो बाबा कहते हैं मधुबन की सभी भुजाएं, मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है, क्योंकि रहते पांडव भवन में, मधुबन में, शांतिवन में है, लेकिन मिलने वालों को तो चांस मिलता है, मधुबन साक्षी होके देखता रहता। दोनों तरफ बैलेंस था, मधुबन में भी क्या करते थे, कुछ नीचे जाएंगे और कुछ नीचे यहाँ पर ड्यूटी करते थे, उसमें ऐसा सिस्टम बनाते थे कि सारे इकट्ठे नहीं जाएं, हर डिपार्टमेंट से एक जाए, एक बार एक जाए, दूसरी बार दूसरा जाए, तो कुछ यहाँ बैठकर सुनते थे, कुछ नीचे जाते थे। तो बाबा कहते हैं लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है, मधुबन साक्षी होके देखता रहता है, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले याद हैं। अब मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो, अब बाबा ने काम दे दिया, मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो, सेवा में, स्थिति में, सब में महान, ठीक है ना, मधुबन वालों को भूलते नहीं है, लेकिन मधुबन को त्याग का चांस देते। बाबा मधुबन वालों को नहीं भूलते हैं, मधुबन वालों को तो हर प्रकार से भरपूर करते हैं, लेकिन कभी कभी उनको त्याग का चांस भी मिलता है। तो बाबा कहते हैं मधुबन वालों को भूलते नहीं हैं, लेकिन मधुबन को त्याग का चांस देते हैं। त्याग का चांस देना मीन्स भाग्य मिलना। अच्छा, अभी सुनेंगे आज का वरदान। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है, उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाते। जो संतुष्ट हैं वो सदा खुश रहते हैं, उसको देखने वाले भी खुश हो जाते हैं। उन्हें कोई भी आत्मा, उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है। तो जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है, तो बाबा कहते हैं उनकी खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसे संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो स्लोगन, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। चोट लगाने वाला तो सदा ही चोट लगाएगा, ऐसा थोड़ी चोट खाते ही रहेंगे। तो बाबा कहते हैं चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। अब एक इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता का रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। रिबन कौन सा काटना है? ऐसे एक बल, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता का रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरनी में डालो फिर देखो सफलता कितनी होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। सभी भाई बहने बैठे रहेंगे, आज विशेष सूचना सुन के जाएंगे। कल भी आप सबको बताया गया था मधुबन की शशि बहन, जिनको हम हमेशा कहते हैं आबू रोड की शशि बहन, क्योंकि ये शशि बहन बाबा की बहुत ही लाडली और बाबा के साथ दादियों के साथ बहुत अच्छे अनुभव किए हैं। कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने कल रात को 10:30-11 के बीच में अपना भौतिक शरीर त्याग करके बाबा की गोदी में गई हैं। उनके लौकिक रिश्तेदार कल भी एक दो आए हैं और आज और कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। कल उनके भौतिक शरीर का अंतिम विदाई कल प्रातः 9:30 पांडव भवन के चारों धाम की यात्रा कराकर करेंगे। शशि बहन ने साकार मम्मा बाबा की पालना तो ली है, लेकिन खास पालना सुदेश दीदी के बहुत पालना ली है। आप दिल्ली से हैं, वहां से ही ज्ञान लिया है और कुछ समय दिल्ली में रह करके आपने सेवाएं दी और साथ में दिल्ली के आसपास कई स्थानों पर भी सेवाएं की हैं और काफी समय संगम भवन में रह करके वहां पर भी इन्होंने सेवाएं की हैं। पिछले कुछ वर्षों से 20-25 वर्षों से यहाँ मधुबन में रहते हुए सेवाएं कर रही थी, लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी नेचर, कभी भी किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, बहुत ही प्यार से हंसते ही खाते गीत गाते रहना, नाचते रहना, बहुत ही हल्के स्वभाव की और बहुत ही हल्की रीति से चलती थी। तो कुछ दिन पहले उनको थोड़ी तकलीफ हुई, ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहां पर भी इनको तकलीफ तो थी, लेकिन फिर भी डांस कर रही हैं, गीत कर रही हैं, गा रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं और लास्ट तक भी शरीर को कुछ भी होता रहा लेकिन आत्मा बहुत ही पीसफुल, बहुत शांत और बहुत ही सुंदर वाइब्रेशन रहे हैं। तो ऐसी आत्मा जो कि बाबा की लाडली दैवी परिवार की लाडली, मधुबन में रहते हुए बहुत सेवा करने का मौका मिला और संगम भवन में आबू रोड में भी आपने रह करके बहुत सेवाएं की हैं, इसलिए उनके नाम के साथ आबू रोड जरूर लगाते हैं, क्योंकि दो नामों में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कहेंगे शशि बहन तो किसी और को समझ लेते हैं, इसलिए जब भी बात करें शशि बहन आबू रोड तो ये पक्का करते हैं, नहीं तो कभी कंफ्यूजन होता नहीं है, लेकिन इन बात का भी ध्यान रखना होता है। तो वो कल रात को बाबा की गोदी में गई हैं और लास्ट में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, बहुत सबको प्यार से दृष्टि भी दे रही थी। तो अभी हम सभी खास इस आत्मा के प्रति योग में बैठ के श्रद्धांजलि देंगे और जैसे उनके लौकिक अन्य रिश्तेदारों का आने का मालूम पड़ेगा तो कल, वैसे तो हमने 9:30 का टाइम रखा है, फिर भी कोई और सूचना होगी तो आपको फिर से बताई जाएगी। अच्छा, ओम शांति। योग के बाद डबल विधि।